कितना अजीब लगेगा कि जिस शख्स के साथ आपने अपने दिल की सारी बातें की हो उसे कुछ याद ही नहीं हो। अनंत के साथ अभी यही हो रहा था, क्योंकि नलिनी को कुछ याद नहीं था कि पिछली बार उनके बीच क्या बातें हुई थी, और इसमें गलती थी तो किसकी? शायद समय की, क्योंकि पिछली बार जब अनंत नलिनी से मिला था तो वो अलग समय रेखा, अलग टाइमलाइन थी, और इस बार ये दूसरी समय रेखा, दूसरी टाइमलाइन है। सही सही देखें तो ये दूसरी नहीं, तीसरी टाइमलाइन है। हां, तीसरा समय चक्र, जब अनंत अपनों को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसके अपने, उन्हें तो याद ही नहीं है कि ये वक्त वो एक बार पहले भी जी चुके हैं। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है, और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी, कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 16। लेखन और आवाज दीपक मिड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। नलिनी को पता नहीं था कि पिछली बार उसकी अनंत के साथ क्या क्या बातें हुई थीं, मगर अनंत इस बात को समझना नहीं चाह रहा था, और उसने नलिनी के हाथ पर हाथ रख दिया। किसी और वक्त पर बात कुछ और होती, मगर अब नलिनी को अनंत से डर लगने लगा था, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींचा। अचानक अनंत को समझ आ गया कि फिलहाल उसकी यह हरकत बेहूदगी लग सकती है, इसलिए उसने नलिनी का हाथ छोड़ दिया। आई एम सॉरी। कुछ देर वहां सन्नाटा छाया रहा। इस बार नलिनी ने कहा, अनंत तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना? अनंत समझ नहीं पा रहा था कि वो नलिनी से क्या बात करे, कैसे वो उसे अपनी फीलिंग्स बताए, कैसे वो उसे बताए कि वो और नलिनी काफी करीब आ चुके थे, मगर अभी तो उन दोनों के बीच पूरे एक समय चक्र का फासला था। अनंत सोच रहा था कि क्या उसे नलिनी को बता देना चाहिए कि वो कालशंकु से दूर भाग रहा है। वो सोच रहा था कि अगर वो नलिनी को सब कुछ बता देता है तो क्या नलिनी उस पर भरोसा करेगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। तभी नलिनी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, यू कैन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। बताओ आखिर क्या चल रहा है? अनंत ने नलिनी की तरफ देखा, फिर काफी सोचकर कहा, तुमने देजावू के बारे में सुना है? देजावू? हां देजावू, मतलब चीजों का रिपीटेशन, एक ही इंसिडेंट दो बार हो रहा हो। नलिनी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कंधे उचका दिए। कहना क्या चाहती हो तुम? अनंत ने कहा, नलिनी थोड़ा मुश्किल है, पर अगर तुम यकीन करोगी तो सब समझ आ जाएगा। उलझन में पड़ी नलिनी ने हां में सिर हिला दिया, और अनंत उसे पूरी बात बताने लगा। यह सब शुरू हुआ 9 फरवरी 2019 को। नलिनी ने बीच में टोका, 9 फरवरी, यानी जिस दिन मेरी तुमसे बात हुई थी और तुमने कहा था कि तुम लोग लौट रहे हो। हां याद आया, तुमने कुछ कहा भी था। हां तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, कहा था कि मिलकर बात करेंगे। अनंत ने ठंडा सा जवाब दिया, हां मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं इस 9 फरवरी की बात नहीं कर रहा हूं। नलिनी उलझन में पड़ गई, बट तुमने अभी कहा 9 फरवरी 2019। अनंत ने उसे इंटरप्ट किया, देखो मेरी बात सुनो, मैं जो बता रहा हूं एक बार उसे ढंग से सुनो, उसके बाद बाकी बात करते हैं। नलिनी ने कहा, ठीक है, और वो तसल्ली से उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। अनंत ने बताना शुरू किया, तो ये सब शुरू हुआ 9 फरवरी 2019 को। उस रोज मैं अपनी गाड़ी से एक अनजान रास्ते पर था। अनंत ने सारी कहानी कहनी शुरू की। वो एक एक करके सारी बातें नलिनी को बताया जा रहा था, और नलिनी वो चुपचाप अनंत के चेहरे को देखते हुए सारी बातें सुन रही थी। करीब आधे घंटे में अनंत उसे पहली बार में घटी सारी घटनाएं बता चुका था। आखिर में अनंत ने कहा, और उसके बाद एक जोर का ब्लास्ट हुआ जिसने पता नहीं मुझे कहां फेंक दिया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी जगह पर था जहां मुझे काल शंकु मिला था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मुझे लगा कि सुशांत मर चुका है, लेकिन जब मैं गेस्ट हाउस में लौट कर आया तो समझ आया कि काल शंकु ने मुझे टाइम में वापस फेंक दिया है। मैं 9 फरवरी 2019 में वापस लौट आया था। अनंत चुप हो गया। उसकी पूरी बात सुनकर नलिनी का मुंह खुला का खुला रह गया।
What?
तुम टाइम ट्रेवल करके वापस 5 दिन पहले पास्ट में पहुंच गए? अनंत ने जवाब दिया, हां। नलिनी ने कहा, यह तो किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट लग रहा है। अनंत झल्ला पड़ा, तुम्हें मजाक लग रहा है? यह सब मेरे साथ बीत चुका है, और एक बार नहीं दो दो बार। अब नलिनी चौंक पड़ी, दो दो बार? अनंत ने कहा, हां दो दो बार। दूसरी बार मैंने सुशांत को बचाने की कोशिश की, मगर मैं प्रारब्ध को नहीं बदल सका। नलिनी ने पूछा, क्या कहा? अनंत ने कहा, प्रारब्ध मींस डेस्टिनी। नलिनी ने कहा, ओके डेस्टिनी, प्रारब्ध। जनरली इतना टफ वर्ड को यूज नहीं करता है ना। लेकिन अनंत ने इस बात पर ध्यान ना देते हुए कहा, उस देवता ने मुझे यही कहा था कि मैं प्रारब्ध को नहीं बदल सकता हूं। दूसरी बार भी सुशांत ने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। अनंत की आवाज में दुख घुल गया था। नलिनी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अनंत ने उसकी तरफ देखकर उससे पूछा, तुम्हें यह तो नहीं लग रहा ना कि मैं पागल हो गया हूं या मैंने कोई नशा कर रखा है? कुछ देर की चुप्पी के बाद नलिनी ने जवाब दिया, अनंत वैसे बुरा मत मानना, बट इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी कोई नशा करके लिख सकता है। अनंत को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है। नलिनी ने आगे पूछा, दूसरी बार में क्या हुआ? अनंत ने कहा, दूसरी बार मेरी तुमसे बात हुई। नलिनी चौंक पड़ी, व्हाट? नलिनी अनंत से दूर हो गई और बड़े अजीब तरह से उसे देखने लगी। अनंत ने हंसते हुए कहा, अरे यार मैं इसीलिए किसी को कुछ नहीं बता रहा हूं क्योंकि कोई मेरी कहानी पर यकीन नहीं कर रहा है। नलिनी ने कहा, कहानी ऐसी हो तो सही जिस पर यकीन किया जा सके। नलिनी ने एक झटके में कह दिया, मगर उसे एहसास हो गया कि शायद अनंत को उसकी यह बात बुरी लग सकती है, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब यह कि। अनंत ने उसे बीच में ही टोक दिया, मैं समझ रहा हूं, मुझे यह भी पता है कि मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकता हूं, लेकिन एक मिनट। अनंत को कुछ याद आया, उसने एक झटके में कहा, दिल्ली में जब मैं तुमसे मिला था उस वक्त तुमने ही मुझे बताया था कि चैनल ने कुछ टाइम पहले इंडियन ट्राइब्स पर कोई फिल्म बनाई है, और उसी के रिसर्च मटेरियल में से ढूंढकर तुमने मुझे बताया कि उस डॉक्यूमेंट्री में भी बल्लियों के बारे में मेंशन किया गया है। यह बात मुझे पहले पता नहीं थी, यह बात तुमने खुद मुझे बताई थी। नलिनी ने कहा, हो सकता है, लेकिन इसे तुम मुझे लोगों को यकीन नहीं दिला सकते हो कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच है। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने एक सिगरेट और सुलगा ली। नलिनी सोच रही थी कि अनंत को किसी तरह का वहम हो गया है, अनंत ने यह बात भांप ली थी। वैसे मुझे पता है कि तुम मुझे अब किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने का सजेशन देने वाली हो। नहीं, अनंत ने बगैर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जानना है कि दूसरी बार क्या हुआ? नलिनी कुछ तय नहीं कर पा रही थी। असल में पूरी बात सुनकर उसे अपने शरीर पर कीड़े रेंगते महसूस होने लगे। ऐसा अक्सर उस वक्त होता है जब अपना कोई खास किसी मुश्किल में हो तो ऐसी हालत हो ही जाती है, इसलिए अनंत हंसने लगा। चलो मैं आगे कुछ नहीं बताता हूं, नलिनी ने कहा। हाँ नहीं, मुझे बताओ आगे क्या हुआ? अनंत सिलसिलेवार ढंग से दूसरी बार घटी घटनाएं बताने लगा। पूरी बात सुनने के बाद नलिनी एकदम चुप थी। अनंत ने उसके कुछ बोलने का इंतजार किया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार अनंत ने ही कहा, यार सुशांत को पूरी बात बताई तो वो भी चुप हो गया, अब तुम भी कुछ नहीं बोल रही हो। नलिनी ने शक जाहिर करते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं? अनंत ने सधे हुए शब्दों में कहा, मेरे तुम्हारे या सुशांत की यकीन करने या ना करने से कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग यहीं रुके रहे तो फिर से वही सब कुछ होगा जो दो बार पहले हो चुका है। नलिनी ने झट से जवाब दिया, लेकिन इस बार तो वो कौन काल शंकु तुम्हारे हाथ लगा ही नहीं है। अनंत ने जवाब दिया, नलिनी उस बूढ़े ने कहा था, अनूप सिंह ने भी कहा था कि कालशंकु किसी को माफ नहीं करता है। उससे बच निकलने का एक ही रास्ता है और वो है यहां से दूर चले जाना, नलिनी ने कहा। और तुम ये कह रहे हो कि जो कुछ होना है वो 15 तारीख की रात तक हो जाएगा, अनंत ने जवाब दिया। हां, नलिनी ने अनंत को समझाते हुए कहा, अनंत तो फिर तुम यहां सेफ हो, यहां कोई नहीं आ सकता है। वैसे भी हम कल की फॉर्मेलिटीज को पूरा किए बगैर यहां से जा नहीं सकते। अनंत कुछ कहना चाहता था लेकिन उससे पहले ही सुशांत बीच में टपक पड़ा। चलो कल तो निकल ही रहे हैं तो आज रात बियर पार्टी हो जाए, नलिनी यू आर ज्वाइनिंग ना। पता नहीं नलिनी का जवाब क्या होता, मगर ऐसा लगा जैसे अनंत की बातों से दूर जाने के लिए उसने हां कह दिया। नलिनी की हां के बाद अब अनंत के पास उनके साथ शरीक होने के सिवा कोई चारा नहीं था। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। नलिनी और अनंत दोनों बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। अनंत अब अपने आप को ज्यादा परेशान ना दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके दो कारण थे, पहला कि कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था और दूसरा कि कहीं ना कहीं उसके मन में एक उम्मीद की किरण टिमटिमाने लगी थी, क्योंकि वो कालशंकु के संपर्क में आने से बच गया था। उसने नलिनी से कहा, वैसे अगर हॉलीवुड में कोई कॉन्टेक्ट हो तो मेरी स्टोरी सुना देना, शायद कोई फिल्म बना दे। नलिनी पर हल्का सुरूर चढ़ चुका था इसलिए वह जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सही कह रहे हो अनंत, यहां तो कोई तुम्हारी स्टोरी पर फिल्म बनाएगा नहीं, पता है क्यों? अनंत ने पूछा। क्यों? यहां इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चलती हैं इसलिए, नलिनी ने जवाब दिया। अरे नहीं यार, इसलिए क्योंकि इसमें लव स्टोरी नहीं है। बस तुम पागलों की तरह उस कोन के पीछे भागते रहते हो, एक भी फीमेल कैरेक्टर तुम्हारी कहानी में नहीं है, अनंत ने हल्का सा हंसते हुए कहा। तुम हो ना मेरी कहानी में, नलिनी ने फिर से जोर का ठहाका लगाया। मैं तुम्हारी स्टोरी में कहां थी, ऐ भाई मुझे घसीट रहे हो, अनंत ने कहा। नहीं यार, मैंने कहा ना मेरी कहानी में तुम्हारा बड़ा रोल है, वो तो पूरी बात मैंने बताई नहीं तुम्हें। असल में अनंत ने नलिनी को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस उसे उतना ही बताया कि वो पूरी बात समझ सके। अब अनंत के मुंह से यह बात सुनकर नलिनी एकदम चुप हो गई। फिर सोचते हुए उसने कहा, वैसे मेरा क्या रोल था तुम्हारी स्टोरी में, कहीं कुछ उल्टा सीधा? अनंत हंसने लगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, तुमने तो बस मुझे सपोर्ट किया था, जैसा भी कर रही हो। नलिनी ने अनंत की तरफ देखते हुए कहा, अनंत यू आर रियली अ नाइस पर्सन, मुझे तो क्या किसी को भी तुम्हें तकलीफ में देखकर अच्छा नहीं लगेगा। थैंक्स नलिनी, नलिनी ने आगे कहा। ओके नाउ टाइम टू स्लीप, गुड नाइट, अनंत ने भी जवाब दिया, गुड नाइट। अनंत अपने रूम की तरफ जाने लगा। गेस्ट हाउस के कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अनंत बुदबुदा उठा, इस कमरे में तो ज्ञान और राज ठहरे हुए हैं। उसने दरवाजे पर नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसने संभलकर दरवाजा खोला और एक झटके में अंदर घुस गया। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फर्श पर काफी सारा खून बिखरा हुआ था और एक तरफ एक लाश गिरी हुई थी। ये कौन है? कमरे में अनजान शख्स की लाश देखकर अनंत सिहर उठा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकला लेकिन बाहर निकलते ही वो किसी से टकरा गया। संभलने से पहले ही उस शख्स ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सर मैं हूं राज। राज की आवाज सुनते ही अनंत की जान में जान आई। उसने कहा, ये कमरे में? लेकिन अनंत के बात पूरी करने से पहले ही राज ने कहा, सर पूरी बात बाद में बताता हूं, अभी आप तुरंत यहां से निकलिए, बाकी लोग पीछे गाड़ी में वेट कर रहे हैं। अनंत ने पूछा, लेकिन नलिनी? राज ने जवाब दिया, सुशांत सर नलिनी मैम को लेकर गाड़ी में पहुंच रहे हैं, आप जल्दी कीजिए। हां, कुछ देर में ही वो लोग वहां से भागकर गेस्ट हाउस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल चुके थे, जहां गाड़ी में ज्ञान, सुशांत और नलिनी उनका इंतजार कर रहे थे। ज्ञान के गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते ही एक शख्स भागकर गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। उसने उनकी तरफ बंदूक तान दी और जोर से चिल्लाया, तूफान सिंह के होते थे अठे से कोनी भाग सको हो। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 16, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।